होशे अध्याय एक। भविष्यद्वक्ता होशे उत्तरी राज्य इसराइल को परमेश्वर का संदेश देता है। पहले पद में वो अपनी सेवा का समय बताता है कि वो राजा उज्जियाह के राज्यकाल में भविष्यवाणी कर रहा है। पहले पद को पढ़ते ही हमें ध्यान आ जाता है कि राजा उज्जियाह के ही समय में यशाया दक्षिण राज्य यहूदा के लिए परमेश्वर का संदेश सुनाता है। होशे उन्हीं राजाओं का उल्लेख करता है जो यशाया की भविष्यवाणी के समय राज्य कर रहे थे। इसका अर्थ ये हुआ कि होशे यशाया का समकालीन भविष्यद्वक्ता था। वो लिखता है, होशे अध्याय एक पद एक, यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। आपको याद होगा कि यशाया अपनी भविष्यवाणी की सेवा की बुलाहट का उल्लेख इस प्रकार करता है, यशाया अध्याय छह पद एक, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यशाया के सेवा काल में हम आगे चलकर देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा था। होशे अध्याय एक पद एक, यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इसराइल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि होशे इसराइल के राजाओं की सूची को यरोबाम तक ही सीमित रखता है, जबकि उसके बाद भी इसराइल में अनेक राजा हुए हैं। इसका कारण यह है कि यरोबाम वो अंतिम राजा था जिससे परमेश्वर ने बातें की थी। उसकी हत्या के बाद इसराइल में चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता फैल गई थी। वहां हत्याओं का सिलसिला आरंभ हो गया था, एक के बाद एक षड्यंत्र रचे जा रहे थे। अतः होशे ने किसी भी राजा को इसराइल के सिंहासन का सच्चा उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया, तथापि उसकी भविष्यवाणियां मुख्य रूप से इसराइल के लिए थी। होशे अध्याय एक पद दो, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म से लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। होशे की पुस्तक में आगे चलकर हम देखेंगे कि परमेश्वर कहता है, होशे अध्याय 12 पद 10, मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूं। दृष्टांत का अर्थ है जीवन संबंधित घटना या कहानी जिसके द्वारा आत्मिक अर्थ प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया जा सके। परमेश्वर ने होशे द्वारा भी उपमाओं एवं दृष्टांतों का उपयोग किया था। परमेश्वर ने होशे से कहा कि वो एक वेश्या से विवाह करे। आवश्यक नहीं कि वो वेश्यावृत्ति में लीन है और उसकी अवैध संतान है। परमेश्वर के कहने का अर्थ था कि एक ऐसी स्त्री जिसका स्वभाव ऐसा हो जो अपने पति को त्याग दे और वेश्या बन जाए। परमेश्वर जानता था कि उस स्त्री का स्वभाव ऐसा था कि वो होशे के प्रति वफादारी नहीं निभा पाएगी और उसे त्याग कर वेश्या बन जाएगी। उसकी पत्नी विवाह के बाद वेश्यावृत्ति में चली गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सच्ची कहानी नहीं है। मैं नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा ही स्त्री से विवाह करने को कहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी पथिनिष्ठ नहीं रहेगी और वो इसराइल की तुलना उस स्त्री से करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसराइल को अपनी दुल्हन स्वीकार किया, उसे आशीषें दी और उससे असीम प्रेम किया था, परंतु वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। यही यहां दर्शाया गया है। होशे अध्याय 1:2 से लेकर 5 तक। क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत सा काम करता है, सो उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वो उसे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इज़राइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इज़राइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा, और उस समय में इज़राइल की तराई में इज़राइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। ये इतिहास में उस युग की बात है जब येहू इज़राइल का राजा बना था। यरोबाम येहू का वंशज था। येहू ने इज़राइल का सिंहासन बलपूर्वक प्राप्त किया था। दुष्ट राजा आहाब के 70 बेटे थे। येहू ने नगर के प्राचीनों को संदेश भेजा और कहा कि आहाज का एक पुत्र आकर मेरा सामना करे। उन्होंने येहू को संदेश भेजा, हम तुझसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं, तुझे क्या चाहिए हमें कह दे। येहू ने कहा, मुझे आहाब के 70 पुत्रों के सर चाहिए। उसकी इस मांग के कारण बहुत खून बहाया गया था और अंत में प्राचीनों ने उनके सिर लाकर येहू के सामने इज़राइल की तराई में रख दिए। यही कारण था कि होशे ने अपने पुत्र का नाम यिज़रेल रखा था कि येहू का ये नीच काम सदा स्मरण रहे कि उसने आहाब के पुत्रों का नाश किया था। उसके इस काम के कारण परमेश्वर ने होशे के द्वारा ये घोषणा की कि वो येहू को दंड देगा, क्योंकि येहू परमेश्वर के लिए जलन रखना था, इसलिए उसने कहा कि वो परमेश्वर के प्रति अपनी जलन का प्रदर्शन दिखाएगा, और उसने बाल के सब पुजारियों का नाश कर दिया। इस कारण परमेश्वर ने कहा कि वो उसे राज करने देगा, परंतु केवल 4 पीढ़ियों तक। इस प्रकार यरोबाम उसकी 4थी पीढ़ी थी। यरोबाम की हत्या के बाद उसका पुत्र जकरिया सिंहासन पर बैठा, परंतु वो शीघ्र ही मारा गया था। इस प्रकार होशे की पुस्तक यरोबाम की मृत्यु से कुछ पहले तक जकरिया के सिंहासन पर बैठने के समय की है। परमेश्वर होशे से कहता है, मैं येहू से उस खून का पलटा लूंगा जो उसने आहाब के पुत्रों के सिर कटवाकर इज़राइल की घाटी को रक्त रंजित किया, इसलिए अपने पुत्र का नाम इज़राइल रखा। इस प्रकार उसका पुत्र इज़राइल एक यादगार बन गया कि परमेश्वर येहू की 4थी पीढ़ी से रक्त का पलटा लेगा, और अंततः ऐसा ही हुआ। होशे अध्याय 1:4-5। क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू, वही राजा जिसके कारण उन्हें मार दिया गया था, के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इसराइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा, और उस समय मैं इज़राइल की तराई में इसराइल के धनुष को तोड़ दूंगा। अतः इसराइल को दंड दिया जाएगा। इस रक्तपात के पलटे का समय आ गया है। होशे अध्याय 1:6। और वो स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लो रुहामा रख। लो रुहामा का अर्थ है दया नहीं या तरस नहीं खाना। होशे अध्याय 1:6 में आगे लिखा है, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा ना करूंगा। ये बड़ी ही त्रासदीपूर्ण बात है कि परमेश्वर कहे मैं फिर कभी दया करके उनका अपराध क्षमा ना करूंगा। उनके अस्तित्व का एकमात्र कारण था परमेश्वर की दया। परमेश्वर उन पर बहुत दयावान था। यदि परमेश्वर की दया हट गई तो फिर बचता ही क्या है। ये बहुत ही कठोर दंड था। होशे अध्याय 1:6 के अंत में लिखा है, उसका नाम लो रुहामा रख, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा ना करूंगा। हिजकिया के युग में इसराइल का अशूरों द्वारा शीघ्र ही नाश होने वाला था, परंतु वो उत्तरी राज्य का विनाश देखने के लिए भी जीवित रहा। होशे अध्याय 1:7, परंतु परमेश्वर ने कहा, यहूदा दक्षिणी राज्य के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। अशूरों ने उत्तरी राज्य नाश किया और हिजकिया के युग में यहूदा के विरुद्ध भी आए। यशया ने कहा, तुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये युद्ध यहोवा का है और वो अशूरों का नाश करेगा। उन्होंने यरूशलेम को घेर रखा था, भोजन सामग्री समाप्त हो गई थी और अकाल पड़ रहा था। उन दिनों में किसी राष्ट्र का घेराव करने का मुख्य उद्देश्य यही होता था कि उनकी आपूर्ति काट दी जाए, कि वे भूख के मारे समर्पण कर दें, क्योंकि शहर पनाह को गिराकर नगर में प्रवेश करना कठिन कार्य होता था, उसमें अनेक जाने जाती थी। उन्होंने हिजकिया को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा। यहोवा का संदेश उसके पास पहुंचा, शांति रख और मेरे उद्धार को देख। सुबह उन्होंने शहरपनाह के बाहर देखा तो पाया कि अशूर सेना पूरी की पूरी मरी पड़ी है। परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके शिविर में से गुजरा और 185,000 सैनियों को मार डाला। जो बचे थे वे लौटकर अपने देश भाग खड़े हुए। परमेश्वर ने कहा था कि वो इसराइल पर दया नहीं करेगा, परंतु यहूदा का उद्धार करेगा। उसने कहा था कि वो ना तो युद्ध द्वारा ना तलवार द्वारा उनकी रक्षा करेगा। उसने अपने स्वर्गदूत के द्वारा उनकी रक्षा की। ये परमेश्वर की दया का प्रमाण था। होशे अध्याय 1:8-9, जब उस स्त्री ने लो रुहामा का दूध छुड़ाया तब वो गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लो अमी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और ना मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। कोई दया नहीं, बहुत हो गया है। अपने इस पुत्र का नाम लो अमी रख, जिसका अर्थ है मेरी प्रजा नहीं, मैं उनका परमेश्वर नहीं हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि होशे की पत्नी ने चरित्रहीनता आरंभ कर दी थी और ये पुत्र होशे का नहीं था, अतः उसका नाम मेरा पुत्र नहीं। परंतु ये इसराइल का प्रतीक भी था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं। जब परमेश्वर कह दे मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं, तो ये बहुत ही गंभीर होती है। ये एक संबंध विच्छेद करने वाली बात है कि परमेश्वर कह दे ना तुम मेरी प्रजा और ना मैं तुम्हारा परमेश्वर। परंतु यहां इसराइल के लिए होने वाले परमेश्वर के मुख्य कार्य की भविष्यवाणी भी है। यद्यपि परमेश्वर ने उनसे संबंध तोड़ लिया है और अब वह उन पर दया नहीं करेगा, वे यहां इसराइल के लिए परमेश्वर के काम की एक आशा से भरी भविष्यवाणी है। होशे अध्याय 1:10-11। तो भी इसराइलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इसराइली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन प्रसिद्ध होगा। जब परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, वो ये भी कह रहा है कि उसी स्थान में अर्थात इज़राइल में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उनकी संख्या रेत के कणों के बराबर होगी। ये परमेश्वर के अनुग्रह, उसके प्रेम और इसराइल के लिए परमेश्वर के कामों द्वारा उसके महिमामय पुनस्थापन की भविष्यवाणी है। आज बाइबल के अनेक अर्थ निर्धारक इसराइल को परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से वंचित दिखाना चाहते हैं। उनके अनुसार परमेश्वर ने इसराइल को त्याग कर वो स्थान कलीसिया को दे दिया है। निस्संदेह पौलुस कहता है कि हम जो कभी अन्य जाति थे, आज उस दाखलता के सहभागी है तथा परमेश्वर की आशीषों के वारिस है। परंतु सत्य तो यह है कि कलीसिया इसराइल नहीं है। पौलुस कहता है कि विश्वास के कारण हम इब्राहिम की संतान हैं, परंतु वास्तव में हम ना तो इसराइल है और ना ही इसराइल को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। अतः वचन को बिगाड़कर कलीसिया को इसराइल कहना अनुचित है। इसके अनेक कारण हैं, परंतु मैं आपको एक ही कारण देता हूं और आपके लिए यही पर्याप्त है। परमेश्वर ने होशे से कहा कि वो जाकर अपनी बेवफा पत्नी को मोल देकर लौटा लाएं और उसे पत्नी रूप में पुनस्थापित करें। यही एक उदाहरण पर्याप्त है कि कलीसिया को इसराइल ना माना जाए, क्योंकि कलीसिया एक कुंवारी वधु है जिसे उसके वर मसीह यीशु के लिए सवार कर तैयार किया गया है। ये एक वेश्या नहीं है जिसे वेश्यालय से मोल देकर लाया गया है। अतः ऐसे बाइबल विचारकों के भ्रम में आप ना पड़े जिनके अनुसार परमेश्वर ने इसराइल का त्याग करके कलीसिया का प्रतिस्थापन वहां किया है, क्योंकि इसराइल के साथ परमेश्वर का प्रयोजन अभी समाप्त नहीं हुआ है। निस्संदेह परमेश्वर ने कह दिया, लो अमी अर्थात तुम मेरे लोग नहीं, परंतु वो ये भी कहेगा, अमी अर्थात तुम मेरी प्रजा हो। परमेश्वर इसराइल में अपने काम को पुनः करेगा।